ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय चौथा और श्लोक संख्या 32 एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रमं आसाद्य हरिं ईजे समाधिना एवं त्रिलोक्या गुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रमम् आसाद्य हरिमीजे समाधिना एवं त्रिलोक्य गुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना एवं इस तरह त्रिलोक तीनों जगत के गुरुणा गुरु द्वारा संदिष्टः ठीक से शिक्षा दी जाकर शब्द योनिना जो समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत है उसके द्वारा बदर्याश्रमम बद्रिकाश्रम के तीर्थ स्थान में आसाद्य पहुंचकर हरिम भगवान को ईजे तुष्ट किया समाधिना समाधि द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थ स्थल पर पहुंचे और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने को समाधि में लगा दिया। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के गुरु हैं और वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम हैं, किंतु परम सत्य के साकार रूप को वेदों द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। परम सत्य के रूप में भगवान को समझ पाने के लिए उनके निजी उपदेशकों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप में भगवद गीता है। परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक भगवान स्वयं कृपा न करे। भगवान कृष्ण ने तो यह विशेष कृपा अर्जुन तथा उद्धव पर प्रकट की जब वे इस भौतिक जगत में थे। निसंदेह भगवान द्वारा भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हुआ था, फिर भी भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को पूर्ण बनाने के लिए भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया। भगवान की इच्छा थी कि उद्धव उनके मिशन को पूरा करे तथा जो ज्ञान भगवद गीता में भी नहीं दिया गया उस ज्ञान का प्रसार करे। जो लोग वेदों के वचनों के प्रति आसक्त रहते हैं वे भी इस श्लोक से यह जान सकते हैं कि भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति वेदों के पुष्टों का अध्ययन करने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाते, वे भगवान विषय ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता का कथन है कि वेदों से भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त ही उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। भगवान के बद्रिकाश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपनी ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। ऐसा अधिकार प्राप्त किए बिना न तो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को समझ सकता है, न उसका उपदेश दे सकता है। जब भगवान इस धरा पर विद्यमान थे तो उन्हें अंतरिक्ष की भी यात्रा करके स्वर्ग से पारिजात लाने तथा अपने गुरु सांदीपनि मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस लाने जैसे बहुत से असामान्य कार्यकलाप संपन्न किए। उद्धव को निश्चित रूप से अन्य लोकों में जीवन की स्थितियों के विषय में सूचित किया गया था और सारे ऋषि उन लोगों के बारे में जानने के लिए उसी तरह उत्सुक थे जिस तरह हम अंतरिक्ष के ग्रहों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। उद्धव को यह संदेश बद्रिकाश्रम को ले जाने के लिए न तो केवल उस तीर्थस्थल के ऋषियों के लिए अपितु नर नारायण अर्चा विग्रहों के लिए भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। ऐसा संदेश वेदों के पुष्टों में वर्णित ज्ञान की अपेक्षा अधिक गुह्य रहा होगा। भगवान निसंदेह समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और उद्धव के माध्यम से नरनारायण तथा अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश थे, किंतु वे अधिक गुह्य थे और एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त द्वारा ही भेजे या समझे जा सकते थे। क्योंकि ऐसा गुह्य ज्ञान एकमात्र भगवान तथा उद्धव को ज्ञात था, अतएव यह कहा जाता है कि उद्धव स्वयं भगवान के सदृश थे। उद्धव की तरह हर व्यक्ति भी भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेशवाहक बन सकता है, बेशर्त कि वह प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। ऐसा गुह्य ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जाता है, जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, और मनुष्य को उन्हीं से यह रहस्य सीखना होता है, अन्य उपाय से नहीं। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वह गुह्य संदेश अवश्य ही भगवान के प्रयाण के रहस्य तथा इस लोक में उनके प्राकट्य के 100 वर्षों बाद उनके वंश के संहार के विषय में जानने के संबंधित रहा होगा। हर व्यक्ति यदुवंश के संहार के रहस्य को जानने के लिए अतीव उत्सुक रहा होगा और वह संदेश भगवान द्वारा उद्धव को बतलाया गया होगा तथा नरनारायण एवं अन्य शुद्ध भक्तों की सूचना के लिए बद्रिकाश्रम भेजा गया होगा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सदनारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभां सुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एवं त्रैलोक गुरुणा संदिष्ट शब्द योनिना बदर्याश्मम आसाद्य हरिमिजे समाधिना। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु भगवान द्वारा
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एवं त्रैलोक गुरुणा संदिष्ट शब्द योनिना बदर्याश्मम आसाद्य हरिनिजे समाधिना। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु भगवान द्वारा उपदेश जाने पर दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थ स्थल पर पहुंचे और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने को समाधि में लगा दिया। तो यहां पिछले दो श्लोकों में भी भगवान के अति गुह्य ज्ञान उद्धव द्वारा भेजे जाने के लिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी मति के अनुसार वो रहस्य खोलने का प्रयत्न करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी बताया कि शायद भगवान के अंतर्धान होना और उसे पहले यादवों का संहार करके किस तरह भगवान ने इन लोगों को भेजा। भगवान वैसे अमानुषी लीला करते तो है ही, लेकिन ये रहस्य की स्पष्टता भगवद्गीता में भी नहीं हुई है। इंगित किया गया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यक्ति यो तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽहम्। जो मेरा आविर्भाव और तिरोभाव और बीच में जो अमानुषी लीला का कर्तव्य है, ये तीनों जो दिव्यता से भरे हुए हैं, इनको जानने से ही मनुष्य एक बार ये शरीर त्याग कर दूसरा जन्म पाता नहीं, दूसरा भव पाता नहीं, भौतिक संसार में आता नहीं। तो ये रहस्य इंगित तो है ही, लेकिन उसकी स्पष्टता नहीं। अर्जुन को इसके बारे में ज्यादा उपदेश नहीं दिया गया। अर्जुन को सिर्फ अपने कर्मयोग में, युद्ध के कर्म में ही भगवान ने प्रवृत्त किया, क्योंकि उस समय उसकी ही आवश्यकता थी। तो वो उपदेश हरेक को भगवान की प्रीति के लिए कर्म करने के लिए ही उत्तेजित करता है। उसे वो दिव्य गति पा सकता है, लेकिन उसके रहस्य जाने बिना। वैसे ये रहस्य गुप्त रीत से भी भगवद गीता में छुपा तो है ही। जब 18वें अध्याय में सारी भौतिक कल्मषता से छुटने के लिए गतिविधियां बताते हैं, लेकिन जीव की स्वतंत्रता पर भगवान कभी अधिकार नहीं लेते। वो अर्जुन को कहते हैं कि मैंने सब कुछ कहा, अब तेरी इच्छा में है वो कर, यथेच्छसि तथा गुरु, इतना कहा। भगवान की इच्छा जान गया और वो अपने कर्म में प्रवृत्त रहने के लिए कटिबद्ध होता है, निश्चयात्मक भाव लाता है और करिष्यतम वचनम तव करके वो भगवान को साथ देता है। उसमें उसकी गति है, लेकिन वो जीव के भगवान के प्रति की जो कर्तव्य भावना है वो अपने अपने गुण और कर्म के विभाग से उसने अदा की। फिर भी भगवान अपनी प्रियता के लिए कुछ और इंगित करते हैं। यह इदम गुह्यम परमम मत भक्तेश विधास्यति, ये परम गुह्य ज्ञान यदि मेरे भक्तों के बीच में ही यदि कोई कहेगा, भक्तिमयी परांकृत्वा जाति नात्र संशय, वो कर्तव्य परम रहस्य खोलने का कर्तव्य, सर्वोच्च भक्ति परांकृत्वा, स्थापित करती है। लेकिन फिर भी रहस्य की स्पष्टता के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? रहस्य की स्पष्टता के लिए अर्जुन ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उद्धव ने ली, इतना फर्क है। क्योंकि भगवान ने सीधा आदेश दिया, मैं चले जाने बाद तू रहे, उद्धव नहीं चाहता था। भगवान ने आदेश दिया और भगवान एकांत में जब चले गए तब उद्धव उनका पीछा कर रहा था, मना करने के पर भी वो गया, क्योंकि वो रहस्य के अनुसार वो प्रेमा भक्ति में व्याकुल रहा, इसीलिए सही ना। और ऐसी प्रेमा भक्ति के व्यवहार में मैत्रेय मुनि भी वहां अनायास उपस्थित हुए हैं, फिर भी भगवान ने इन पर ध्यान नहीं दिया, उद्धव को प्रेमा भक्ति का वार्तालाप शुरू करते हैं और उनको ये सारे उपदेश देते हैं और बद्रिकाश्रम में जाने को कहते हैं। बद्रिकाश्रम में कौन कौन रह रहे हैं? नरनारायण ऋषि हैं और बहुत सारे तपस्वी वहां हैं। इनका इन सब की स्थिति पवित्र तो है ही, लेकिन अलग अलग आध्यात्मिक स्तर पे हैं, अलग अलग। जैसे कि अगले अध्याय में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि विशुद्ध भक्त की स्थिति जो वासुदेव स्थिति कहलाती है, वही भगवान को भगवान के ये विशुद्ध सत्व का जो स्तर है उस पर वो आ सकता है और भगवान की दिव्यता पाकर वो मुक्त रहता है, किसी भी संयोग में वो विचलित नहीं होता, वो वसुदेव स्थिति है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव सत्तितम, विशुद्ध सत्व की स्थिति वसुदेव कहलाती है। और भगवान को समझने के लिए या भगवान का साक्षात्कार करने के लिए वो आवश्यक है, इसलिए वसुदेव और देवकी द्वारा भगवान का मूल वास्तविक रूप प्रकट होता है। लेकिन इन दोनों को भी दिव्य प्रेमा भक्ति का संबंध भगवान ने नहीं बताया, वो तो गोकुल चले गए और यशोदा और नंद महाराज पर ऐसा अनायास ही विशुद्ध भक्ति का जो प्रेमा भक्ति कहलाती है उसका रसास्वाद कराते हैं। तो यानी कि ये दोनों की भी अलग अलग स्थिति है, वसुदेव देवकी की भी और नंद महाराज और यशोदा माता की भी। तो ये अलग अलग स्तर है। दूसरों की तो बात ही कहा, जो ज्ञान मार्ग द्वारा सिर्फ निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, इन लोगों तो दिखाई देता होगा लेकिन जैसे मधुमक्खी सिर्फ बोतल पर चिपकी रहती है, बोतल में जो शहद है उसका रसास्वाद बिल्कुल उसे पता ही नहीं, तो वो ज्ञान मार्गियों की दशा है। दूसरे लोग जो ये कर्म या योग द्वारा जो ज्ञान मार्ग द्वारा सिर्फ निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, इन लोगों तो दिखाई देता होगा लेकिन जैसे मधुमक्खी सिर्फ बोतल पर चिपकी रहती है, बोतल में जो शहद है उसका रसास्वाद बिल्कुल उसे पता ही नहीं, तो वो ज्ञान मार्गियों की दशा है। दूसरे लोग जो ये कर्म या योग द्वारा भगवान का साक्षात करने की या भगवान के लिए कोई सेवा करने की यदि भक्ति के द्वारा चेष्टा करते हैं, इन लोगों की स्थिति कम से कम मुक्ति वाली तो होती ही है। मुक्ति पद के बाद विशुद्ध भक्ति की शुरुआत होती है, वो भगवद गीता में स्पष्ट है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समत सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते परां। तो क्या इन लोगों को ये इदम गुह्यम परमम मद भक्तेश्व विधाशति पता चलेगा क्या? वो लोग क्या सक्षम है ऐसा विशुद्ध ज्ञान देने के लिए? भगवान के अति गुह्य रहस्य को देने के लिए ये सक्षम नहीं। भगवान का विशुद्ध भक्त ही भगवान का प्रतिनिधि बन सकता है। जो भगवान के ये दिव्य प्रेमानुभूति का रहस्य प्रकट कर सके, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह कहा कि शायद ये यादवों का संहार और अपने अंतर ध्यान के पीछे जो रहस्य है वो खुला करने के लिए उद्धव जी को यह संदेश लेकर भेजा कि बद्रिकाश्रम में जाओ और वहां के ऋषियों को यह समझाओ। उद्धव जी के चरित्र बिल्कुल भगवान जैसे विशुद्ध हैं, भगवान जैसा ही इनका रूप है और भगवान जैसा ही वो मुक्त है। इहार यस्य हरिदास्य मनसा कर्मणा गिरा निखिलपि अवस्थासु जीवन मुक्तस्य उच्यते। जीवन मुक्त यानी कि सामान्यतः ये भौतिक धरातल पर भी हमें काफी सहन करना पड़ता है, ये तीनों गुणों सत्व रज और तमो गुण के ताप को सहन करना पड़ता है, लेकिन सहन करते करते भी विचलित हो जाते हैं। तो जहां उद्धव जी की स्थिति बिल्कुल अविचलित रही है, क्योंकि भगवान भी अविचलित रहते हैं, इनको तीनों गुण स्पर्श नहीं करते, तीनों गुणों स्पर्श नहीं करते, वो गुणातीत कहलाते हैं, क्योंकि इनका स्वरूप ही विशुद्ध सत्व में होता है और इनकी सारी लीलाएं आध्यात्मिक स्तर पे यानी कि दिव्य स्तर पे हैं, जहां सत चित और आनंद के गुणों के अलावा और कोई गुणों असर नहीं करते। सच्चिदानंद गुण आध्यात्मिक गुण है, भौतिक गुण नहीं है। तो उद्धव जी भी ऐसे स्तर पे हैं, इसलिए उनको चुना कि तू मेरा प्रतिनिधि बन और ये रहस्य स्पष्ट करने के लिए जा, क्योंकि वहां भी ऋषि मुनियां बहुत उत्सुक हैं, सब जानेंगे कि भगवान जाते पहले देखो ये यादवों को कैसे उनके होते हुए मरना पड़ा। कोई तो भगवान के बारे में भी संदेह करता है, कह रहे एक शिकारी के तीर लगने से भगवान मरे। अपनी अपनी बुद्धि अपने अपने स्तर पर लोग विचार करते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कितनी स्पष्टता करते हैं कि ऐसा तो है ही नहीं। यानी कि भगवान का विशुद्ध चरित्र का जो दिव्यता वाला सारा प्रभाव है, उसे व्यक्ति को ग्रहण करने के लिए ऐसे ही प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है जिसके सानिध्य में आकर, जिससे हम पृच्छा करके, जिनकी सेवा करके, परिप्रश्नेन सेवा, ये सब करके हम वो भी पा सकते हैं। ऐसी विशुद्ध परंपरा जहां नहीं है, तो भगवान के रहस्यों को खुला करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता। तो श्री प्रभुपाद यहां कितनी स्पष्टता करते। अब देखो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में भी कहा गया है कि इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेन साकं विजुर्हु बहुकृत पुंज पुंजा। सब ग्वार बार भगवान के साथ खेल रहे हैं। ये से दृश्य को भी सोचने के लिए अलग अलग लोगों की बुद्धि किस ढंग काम करती है। हा? कोई ब्रह्म सुख का अनुभव करने के लिए ज्ञान मार्गी लोग अपने दिमाग से सोचते हैं लेकिन यहां पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरे हैं दास्यम यानी कि सेवा करने वाले भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, चाहे कोई पुजारी के रूप में हो, कोई और रूप में हो। 29वें अध्याय में इसी ग्रंथ के तीसरे स्कंध के 29वें अध्याय में कपिल देव देवहूति को ये भगवान की सेवा पूजा करने वाले पुजारियों की भी पूरे पूरी सफाई करते हैं कि जब तक परमात्मा का दर्शन भगवान की सेवा पूजा करते नहीं होता है, और ऐसा व्यवहार सब आने वाले दर्शनार्थियों के साथ ये पुजारी का व्यवहार नहीं होता, तब तक पूजा का कोई अर्थ नहीं। लेकिन ये पांच रात्रि की सेवा पद्धति ही धीरे धीरे हमें परमात्मा का दर्शन करने के लिए ही सक्षम बनाती है। इसीलिए शुद्ध पद्धति अपना, अपने मन गणत विचारों से हम कुछ भक्ति नहीं कर पाते। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाद तैयार कल वो तो समाज में उपद्रव पैदा करती है। अधिकृतता से सीखना, क्योंकि हमें अपना मूल गंतव्य मूल प्रयोजन भगवान की प्रेमा, प्रेमोपमार्थ महान चैतन्य महाप्रभु ने हमें पंचम पुरुषार्थ दिया। तो ये प्रेम का रहस्य खोलने के लिए क्या ये ज्ञानियों की, मायावादियों की, या ऐसे तथाकथित कहलाने वाले भक्तों की माध्यम से थोड़ा मिलेगा। उत्तम अधिकारी की हमें चाहना रहनी चाहिए कि ऐसा रहस्य वही खोल सकते हैं। उत्तम अधिकारी का किसको कहते हैं? उत्तम अधिकारी का लक्षण क्या? तीन प्रकार के भक्ति में तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। क्या क्या अंतर है? कनिष्ठ अधिकारी सिर्फ दर्शनार्थी बनकर आता है, भगवान को जानता है, सब जगह है तो मूर्ति में भी है, ऐसी श्रद्धा रखकर आता है, लेकिन न तो भक्तों के साथ उसका व्यवहार है, यानी कि भगवान को देखता है दूसरों को नहीं देखता। मूर्ति में तो मूर्ति लेकिन अपनी श्रद्धा है, वो कनिष्ठ अधिकारी कहता है। मध्यम अधिकारी जो भगवान के लिए सेवा करता है नित्य नियमित रूप से और भक्तों के साथ उसका व्यवहार है, भगवान का तत्व रहस्य जानने का वो प्रयत्न करता है। तददाति प्रतिगृहणाति भुंगते भोजयते गुह्यं पृच्छति आख्याति च, ये मध्यम अधिकारी के लिए बहुत आवश्यक व्यवहार बन जाता है, सही ना? लेकिन उत्तम अधिकारी को जब भगवान को भी देखता है, सारे भक्तों में भगवान में और अभक्तों में भी भेदभाव नहीं करता, सबको परमात्मा की स्थिति में और जानकर ऐसा व्यवहार करता है सबके साथ, तो उत्तम अधिकारी, क्योंकि उसने भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान का तत्व विज्ञान उसे पता है, वही रहस्य खोल सकते हैं, वही प्रतिनिधि बन सकता है। तो उद्धव ऐसा था, तो ये ज्ञान मार्गियो, ये तथाकथित भक्त लोग और मायावादी मायाश्रिताना जो कर्मी है, मायावादी जो जानते ही नहीं, सिर्फ दूसरों का अनुकरण करते रहते हैं, अभी श्रद्धा है कल नहीं है, ये कमजोर लोग जो हैं, तो ये तीनों द्वारा ये ग्वाल बाल भगवान के साथ कैसे खेल रहे, इन पर क्या नजर कर सकते हैं? साकम विजुरहु, विजुर हो यानी कि बहुत ऐसा आनंद करते हैं जो हमें चक्राव में डाल देते हैं, क्योंकि एक तो हमारे जैसा व्यवहार कर रहे हैं लेकिन भगवान के साथ, और भगवान होते हुए भी भगवान हमारा जैसा व्यवहार कर रहा है, तो साकम विजुर बहुकृत पुंज पुंजा, इनको इन सब लोगों को पता नहीं कि ऐसे ग्वाल बालों ने कितने जन्मों के पुण्यों के पुंज इकट्ठे किए होंगे, इनको पता नहीं। तो भगवान की ये प्रेमा भक्ति का गुण रहस्य क्या इन लोगों के पास मिलेगा? कठोपनिषद में क्या कहा? नायमात्मा न प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन वा, भगवान का ये अति गुह्य रहस्य बहुत प्रवचनों द्वारा भी नहीं मिलता, बहुत सुनकर भी नहीं मिलता, और बहुत बुद्धि दौड़ाने के बावजूद भी नहीं मिलता। गुजराती में कहावत है, कथा सुनी सुनी फूटिया कान तोय न आयु ब्रह्म ज्ञान, सही ना? कान भी फूट जाते हैं लेकिन यह रहस्य पता नहीं चलता, तो बोलने से भी क्या फायदा? इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यदि बोलना है तो स्पष्ट बोलना पड़ेगा, शास्त्रों का संदर्भ देना पड़ेगा, गप्पे नहीं मार सकते। और प्रामाणिकता कहां मिलेगी? गुरु साधु और शास्त्र तीनों के आधार। इसलिए जो परंपरा में हमें जो प्राप्त है उसे पकड़ो। प्रभुपाद जी जैसे विशुद्ध भक्त जब भगवान के ये अति गुह्य रहस्य प्रकट करने के लिए इन्होंने ये बताया, ये देखो और शास्त्र के साथ सम्मिलित करो। भगवान यदि अपनी मर्जी से जिन पर प्रसन्न होते हैं इनको ही अपना रहस्य खुला करते हैं। यम एवेश वृणुते तेन लभ्य, किसको पाता है ये? भगवान अपनी मर्जी से, वैसे ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता क्या, मैं सबको नहीं दिखाई देता, मैं अपने आप को अपनी योग माया से मैं ढका रखता हूं कि वो मेरा रहस्य न जाने। कम से कम ये विशुद्ध स्थिति पे आना ही पड़ेगा। अर्जुन और उद्धव जैसे जब आए, बहुत सारे ऐसे भगवान के पास पहुंचे हैं ऐसा बताया गया है भगवद गीता में। तो यम एवेश वृणुते, जिस पर वो अपना पर्दा डाल देते हैं वो तो कभी नहीं पर, लेकिन वो माया का पर्दा में फंसता है। भगवान ने ये रचना की है क्योंकि भगवान की इच्छा ही विरुद्ध ये जीना चाहता है तो उनको पर्दा पड़ जाता है। स्वयं एवेश वृणुते, इन पर पर्दा डाल देते हैं, लेकिन दल्लभ्य दे कौन पाता है कि तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। जब स्वयं भगवान अपने आप को विवृणुते यानी कि अपना ही रहस्य अपनी मर्जी से जब खुला करते उनको ही देते हैं, अन्य किसी को नहीं। तो ये कठोपनिषद में भी कहा है और मुंडक उपनिषद में भी कहा है, सही। तो हमें देखना चाहिए कि किस ढंग से रहस्य खुला करने के लिए पहले लायकात बननी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उद्धव की तरह हरेक व्यक्ति भी भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेशवाहक बन सकता है, यानी कि भगवान के स्तर पर आना पड़ता है। हम लोग माया के स्तर पर रहना चाहते हैं और भगवान को समझने की कोशिश करते हैं और हम अपना ये स्तर छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें इतना लगाव, तब वैराग्य की भावना रखी जाती है, हम छोड़ना ही नहीं चाहते ये दशा अपनी भौतिक स्थिति। हम अपने आप को बहुत समझते हैं, मैं यूं हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकना हूं, अपने आप पर ही गर्विष्ठ, अपना बखान करना, हम उसमें से ही ऊंचे नहीं आए तो भगवान को कैसे जान पाएंगे, इनका गुड़ रहस्य कैसे पता चलेगा। भगवान के स्तर पर आना पड़ता है। भगवान के स्तर पर आने के लिए वसुदेव और देवकी ने कितनी मेहनत की थी उसका भी परिचय होना चाहिए। जो वसुदेव की स्थिति बताई है, विशुद्ध सत्व की स्थिति, वो स्तर इसलिए हमें हताश नहीं होना चाहिए। इतना सारा कड़क है, चैतन्य महाप्रभु अति दयालु है, उन्होंने ही भागवतम के 10वें स्कंद में से ही श्लोक निकाला, कि स्थान स्थित श्रुति गताम तनु वांग मनोभी, सर्वप्रथम अपने स्थान में बने रहो। लेकिन श्रुति गता श्रुति शास्त्रों के आदेशों का पालन मनसा वाचा कर्मणा तीनों द्वारा करो। तनु वांग मनो भी, वाचा से, मन से और शरीर से, श्रुति गता तब वो स्तर आ सकता है। स्थान स्थित पद्धति है, फिर भी हम अपने मन के राजा हैं, हम अपनी अपनी चलाना चाहते हैं, दूसरों को प्रभावित करना, जो बेवकूफ है उनको और एक और बेवकूफ प्रभावित करता है, और गुरु साधु शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं लेता, तो वो स्तर पे कैसे आ सकते हैं। यही दसवें स्कंद में भी ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अथापि तेव देव, अथापि ते देव पदाम्बुज द्वयम् प्रसाद लेशानुग्रहित एव हि जानाति तत्त्वम् भगवन महिम्नो। भगवान की महिमा का तत्व जानने के लिए क्या आवश्यकता है। देखो कि कहे भगवान आपके दो चरण कमल हैं, इनके नाखून की जो तेजस्वी प्रभा का भी आश्रय जो नहीं लेता है, उसके बिना आपकी महिमा उसे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तो न चान्य एको अपि चिरन विचिन्मन, जो भगवान के चरण कमल के नाखूनों के जो आभा निकल रही है, इनकी भी शरण लेना नहीं चाहता है, उन पर भी आकर्षित नहीं होता है, तो चाहे लाख करे उपाय, कितना दिमाग दौड़ाया करे, चीरन अपि विचिन्वन, लंबे लंबे समय तक, युगों युगों तक वो सोचा ही करे, न पी बिचिन मन, वो भगवान इसीलिए अविचिन्त्य है, अविचिन्त्य तत्व। अरे वेदों में भी नहीं पता चलता भगवान के व्यक्तित्व का कोई चरित्र या उल्लेख वेदों में नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में पता है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषौ नव यौवनम च वेदेषु अपि अदुर्लभम, वेदेषु सुदुर्लभम अदुर्लभम आद्यभक्तो, वेदेषु सुदुर्लभम, सुदुर्लभम मीन्स दुर्लभ तो ठीक है नहीं मिलेगा, लेकिन सुदुर्लभ अत्यंत कठिन, बिल्कुल सोच ही मत तुझे मिलेगा। यानी कि वेदों की ऋचाओं में भगवान के व्यक्तित्व का परिचय नहीं बताया, इसलिए वेदों का आधार नहीं लेना, भगवान का तत्व का परिचय करना हो तो ठीक है वेदों का आधार लो, लेकिन भगवान के व्यक्तित्व का परिचय करना हो तो किसके पास मिलेगा, अदुर्लभम आत्मभक्तो, भगवान का निजी भक्त जो है। निजी भक्त की कैटेगरी बहुत है, लेकिन खुद अपने आप को मत कि मैं निजी भक्त हूं, कभी सोचना नहीं मैं भक्त हूं, मैं भक्तों का भक्त हूं, वो अपनी बहुत सुरक्षा वाली स्थिति बनी रहे। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास अनुदास, क्षुरस्य धारा। इसलिए भक्ति का मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने को बराबर है। गलत समझे गए काम से कटा ही पांव, तो श्रीमद् भागवत में सारा वर्णित है। लोग इन पर चर्चा नहीं करते हैं। भगवान की प्रेमा भक्ति के संबंध में ये रहस्य कोई प्रोफेशनल रिसाइटर, ये पेशेवर कथाकार नहीं कर सकते। तो मायावादियों जो अद्वैत सिद्धांतवादी हैं, जो निर्गुण तत्ववादी हैं, जो निर्विशेषवादी और निपट क्या कहते हैं निरीश्वरवादी, ये कौन कैसे बसाएगा? इनके पास जाने की आवश्यकता क्या है? इनका सुनने से हम यत्किंचित भक्ति करते हैं उसका भी सत्यानाश हो जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं। ओ हमें यहां से कुछ मिलेगा, हम इनका सुनने जाए, ओ हमें वहां से कुछ मिलेगा, और काफी ये रोचक प्रदर्शनी कर रहे हैं, कोई तो लीला कर रहा है, कोई बहुत सारा संगीत बजा रहा है, ये सब अपनी इंद्रियों की खिड़की खोलने के बराबर, नियंत्रित नहीं कर पाते। तो इसी तरह भगवान के भक्ति में भी ये बहुत भारी उसे क्या कहते हैं एंटरप्राइज शुरू हो गई है, व्यवसायगिरी चालू हो गई, धर्म एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, औद्योगिकरण हो गया धर्म का, इसे क्या फायदा? हम जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और जो श्रद्धा के साथ आते हैं उन पर वो लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे उसका हम विचार नहीं करते। चलो बहते जाओ कहीं तो जाएंगे, लेकिन जहां लक्ष्य नहीं तो बहने की क्या आवश्यकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन द्वारा आत्मा की जागृति और उसकी सुरक्षा दे रखी है। ये भक्ति का जो प्रवाह है उसमें बहना और प्रामाणिक रूप से स्वीकार करके ही अंदर उतरना है, बाद में बहो। जो प्रामाणिक रूप से स्वीकार नहीं करता, इन लोगों को बहने की क्या आवश्यकता है? वो तो चले जाएंगे, पता नहीं भंवर में भी अंदर गोल गोल घूमेंगे, क्योंकि प्रवाह तो बहुत विचित्र होता है। आसानी से हमें भगवान के समुद्र की ओर थोड़ा ले जाएगा। इसलिए बहुत सारे अंदर भंवर भी चढ़ते हैं, भवंडर भी चढ़ते हैं, क्या क्या नहीं चढ़ता है। महासागर को मिलने में तो दम निकलता है, लेकिन भक्ति का प्रवाह जो है, जो चेतन महाप्रभु ने बताया, बहुत सुरक्षित है। उसमें प्रामाणिकता से उतरना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्त ये वाक्य अपने चित्त में सब एक ग्रंथि बना दो कि गुरु के वचन, शास्त्र के वचन और साधुओं के वचन एक होने चाहिए। तो साधु यानी परंपरा, परंपरा में परंपरा कैसे प्राप्त होती है? चाहे दीक्षा या शिक्षा, दोनों से परंपरा चालू। तो ये जो शिक्षा का मूल अर्थ बिल्कुल अर्थ गठन किए बिना यथावत हमें भगवान का ये रहस्य प्राप्त होना होता है। यहां सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ही क्यों उद्धरण दिया, क्योंकि वो प्रामाणिक अपनी परंपरा में, कोई फालतुओं का नहीं लिया, चाहे कितनी रोचक भाषा में कोई न बोलता। तो इस ढंग से हमें ये श्लोक में श्री प्रभुपाद जी समझाने की कोशिश करते हैं कि एक विशुद्ध भक्त की शरण में ही हम ये रहस्य पा सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? हरि बोल। साधु एक थोड़े होते हैं, अपने गुरु वो परंपरा में आए, परंपरागत गुरु तो होने चाहिए ना, तो क्या परंपरा साधु नहीं होनी? अपने एक गुरु ही प्रमाण लेकर खड़े रहे तो हमें कोई दूसरे, वो तो अंधश्रद्धा कहलाएगी। अपने गुरु सही बोलते हैं उसका नाप तोल करना है तो किससे करें? जो गुरु ये परंपरा से चले आए हैं उसको क्या ये प्रामाणिक है? वो देखने के लिए परंपरा तो होती ही है, और परंपरा अस्खलित होनी चाहिए, वो भगवान कृष्ण द्वारा ही सिद्धि शिक्षा में आने वाली होनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, इसी तरह एवं परंपरा प्राप्तम इमं। लेकिन काल के खप्पर में तो वो भी नष्ट होती है, लेकिन यदि नष्ट होती है तो भगवान को पुनः आकर स्थापित करनी पड़ती है, सही ना? तो बेहतर है यदि हमारे पास है तो हम क्यों नष्ट करें? नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। और परंपरा का जो है वो शास्त्र में निहित है, उद्धरण करना ही पड़ता है। बताओ, कोई भी गप्पे नहीं मार सकता। इसीलिए ये तीनों की साम्यता, गुरु साधु और शास्त्र, तीनों की साम्यता पर हमारी सुरक्षा भक्ति की है। जो लोग लेजी हैं, दिमाग नहीं चढ़ाना चाहते हैं, कम अक्कल है, वो सिर्फ गुरु के पुतले पर ही नजर रखते हैं, ज्यादातर गुरु क्या कहता है वो भी सुनते नहीं, गुरु तो साधु होना है चाहिए, लेकिन वो उसकी साधुता अपनी परंपरा पर निर्भर है। इसीलिए वैसे गुरु शास्त्र भी जानता है, सही, शास्त्र परेच निष्णातम होना चाहिए, तो शास्त्र जानता है, इसीलिए क्या शास्त्र की आवश्यकता नहीं? आप अपने गुरु से पूछो, आप अपने आप मन को क्यों मान लेते हो? आप अपने गुरु से सीधे प्रश्न क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आपको परंपरा की आवश्यकता है, शास्त्र की आवश्यकता है, क्योंकि हां तो आपको स्वीकारना पड़ेगा ना। तो ऐसा प्रश्न का समाधान तुरंत हो जाएगा। यदि आपके गुरु ना बोलते हैं, हां परंपरा की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं, तो भय समझना लाल बत्ती। और प्रश्न है।
महाराज आप कह रहे थे कि गोप बालक जो थे उनकी स्वीकृति कई जन्मों की एकत्रित थी और माता यशोदा और नंद बाबा ने भी कई जन्मों से तपस्या की तब उन्हें ये स्तर प्राप्त हुआ, तो हम लोग स्थिति हम लोग कहाँ मिलवा,
तुम जानो मुझे क्या पता है। यदि पूछना है तो अपने गुरु से पूछो। सही ना, अरे उतावली क्यों करते हो। कितना बैंक अकाउंट है हमें क्या।
फिर महाराज ये कह रहे ना एक जन्म में सुनते हैं एक जन्म में भी आदमी भगवत भक्ति की प्राप्ति
अवश्य शुद्ध भक्ति की स्थिति आ सकती है, क्यों नहीं। जहां पॉलिटिक्स का साम्राज्य हो वहां देर लगेगी। सही ना, चैतन्य महाप्रभु ने आश्वासन दिया है, हमारी क्या सोच रहनी चाहिए। हमारे पुण्य की गिनती करने के बजाय प्रणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदे न कीर्तनीय सदा। वो होगा अपनी समय पर, लेकिन उतावली मत करो। चलो भगवान की मर्जी पर, अपनी मर्जी पर मत चलो। बहुत सारी चीजें पहले क्रमानुसार धीरे धीरे हटानी है। लेकिन भगवान के नाम में पूर्ण ताकत है, और ताकत इस कलयुग में किसी भी चीज पर नहीं है। न भरोसा रखो, क्योंकि शास्त्र को भी अन्य पद्धतियों पर भरोसा नहीं कलयुग के, नहीं तो कहते क्यों। वह समय बर्बादी कहते हैं कलयुग में, जो हरिनाम नहीं करता उसे उद्धार नहीं करना चाहता है, दूसरी पद्धति अपनाना चाहता है, तो समय बर्बादी करता है। यूं बता दिया, सर्वप्रथम हम लक्ष्य जानते हैं, लक्ष्य को भी हम अपनी अपनी अलग मतियों से हम कोई निर्गुण समझता है, कोई भौतिक सगुणता समझता है, कोई माया का पुतला समझता है ऐसे परम व्यक्तित्व को। इन सबसे क्या फायदा, जो अपने आप जैसे बताते हैं वैसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने क्यों नहीं किया, ऐसा स्वीकार किया तब तो उसका नंबर आता है। दसवें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को कैसे स्वीकार किया, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वदेवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रविषि सर्वमेतत्र तन्मन्ये यन्मा वदसी केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिं विदुर देवान दानवा। देवता और दानव भी आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो क्या हम देवताओं की भी कैटेगरी में है क्या। लेकिन एक विशुद्ध भक्त के सानिध्य में रहकर हमें यह सब स्पष्ट होता है। श्री प्रभुपाद जी की वाणी सक्षम है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।